समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून नेहा। नेहा, इट्स 10th ऑफ जून टुडे, व्हिच एवरी ईयर इज डेडिकेटेड टू मेनी थिंग्स ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस। And today is the day when we celebrate International Eye Donation Day, also known as World Eye Donation Day. Every year, thousands of people all over the globe suffer from curable blindness for one reason, a scarcity of donated corneas. And that is why we need to spread awareness about eye donation so that people less fortunate can see this beautiful world. Together, let's make a difference and create a world where everyone has the opportunity to see. So let's come out of our homes for the first step towards donating our eyes, and that is to sign an eye donation pledge at a registered eye bank. And next, the most importantly, inform your loved ones about your decision so that they know who to call after your death, since the eye removal process needs to be almost immediately after death. So on World Eye Donation Day, let's brighten someone's world by giving the gift of sight. Isn't it the most wonderful thing you can do, Neha, by giving the gift of sight to someone? Isn't it?
जी अनुजा, आप अपने नजरिए अपने जाने के बाद अपनी आंखों से इस संसार को तो नहीं देख सकते, पर आप किसी और को जीवन दे सकते हैं, वो दुनिया को देख सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास होगा।
Right, and it can make two blind people see. So I am sure it's a good feeling when you enlighten someone's world by donating your eyes once you leave the world. So we should come out of our homes and, of course, pledge to donate our eyes. And on World Eye Donation Day this time, let's brighten someone's world by giving the gift of sight. So moving on, we have for you the news making headlines at this hour of the day. So starting with the headlines, Prime Minister Narendra Modi lauds remarkable transformation in India's defence sector with focus on modernization and self-reliance in defence production.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता।
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एम्फसाइजेस द नीड टू अलाइन साइंस विद विजन ऑफ विकसित भारत एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट।
उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी।
And India to lock horns with Hong Kong in crucial 2027 AFC Asian Cup qualifier final this evening. And it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Conference of Young Scientists. Today we have something truly electrifying for you. This amazing story is straight from the City of Pearls, Hyderabad. Because India just took a giant leap in global scientific leadership at the International Conference of Young Scientists and the annual general meeting of the Global Young Academy.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नव प्रवर्तकों और परिवर्तनकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब समावेशी पारिस्थितिक तंत्र बनाने और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का समय है।
All part of world. More than 200 delegates are from 60 countries participated in this conference. They will deliberate the new dynamics of science, expectation of society, and their responsibility. I am confident the way India is emerging as a knowledge hub for the globe, this kind of conference is going to help us, going to create new ecosystem in our country also. And India is in a leadership position today.
Yes, folks, science with heart, science with purpose, science that serves. Imagine this, listeners, a world where science isn't locked behind patents, but shared like stories around a campfire. A world where partnerships, not profits, shape our destiny.
हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ग्लोबल यंग एकेडमी की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से उद्देश्य और सहानुभूति की भावना के साथ सहयोग करने और सह निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने विज्ञान को विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
Sounds powerful, doesn't it? Minister Pradhan called on young scientists to collaborate with empathy, innovate with ethics, and always, always put people at the center of progress.
Jagadevan Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. Jagadeva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam.
भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ प्राचीन ज्ञान और भविष्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
Yes, he reminded the world that this is not just a slogan, it's how we live, it's how India leads. And through initiatives like the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Mission Life, LIFE, and the India Science and Research Fellowship.
यह सब विश्व बंधुत्व विज्ञान के माध्यम से वैश्विक मित्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विज्ञान अब केवल प्रयोगशालाओं और सिद्धांतों के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, यह पृथ्वी ग्रह के बारे में है और यह भविष्य की पीढ़ियों के बारे में है।
So, dear listeners, here's your call to action. Whether you are a student, a teacher, an engineer or an artist, the future of science belongs to all of us. Let's join hands, let's think big, act bold, and care deeply. Because India isn't just imagining the future, we are building it together. And also speaking of science and technology, we also have to talk about launch of the Axiom 4 mission that would carry India's astronaut Subhanshu Shukla to space, which has been postponed by a day due to bad weather. In a social media post, the ISRO chairman V. Narayanan also said that the targeted time of the launch is 5:30 p.m. IST tomorrow. And in a video message, Group Captain Subhanshu Shukla expressed happiness being part of Axiom 4 mission.
The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I would be going. I was extremely excited to be here. I was very, very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things.
मिशन के सह पायलटों ने मिशन के हिस्से के रूप में शुभांशु शुक्ला की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे परिचालन में कुशल हैं और अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी के मामले में चतुराई से काम करते हैं। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के चार अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन के चार अंतरिक्ष यात्री भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोज उज़नांस्की, हंगरी के टिबोर कपू और अमेरिका के पैगी विट्सन हैं। अंतरिक्ष यात्री 31 देशों के लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, जिनसे जिनमें इसरो के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाएं शामिल हैं।
Right, Neha, as we are all waiting for the launch of Axiom 4 mission, which has been postponed due to unfavorable weather, it is a planned private space flight to the International Space Station, which will mark India's return to space 41 years after Rakesh Sharma's historic space flight on board Russia's Soyuz mission in 1984. And this time, it's Group Captain of Indian Air Force Subhanshu Shukla, who will become the first Indian to visit the space station and is scheduled to spend up to 14 days aboard the orbiting laboratory.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या है उनके पास।
Right, so we start with the Union Education Minister Dharmendra Pradhan today emphasized on the country's ancient tradition of knowledge creation rooted in curiosity, sustainability and ethics and inclusivity in the digital domain. Addressing the International Conference of Young Scientists at the IIT Hyderabad at Kandy in Telangana state, the Union Minister noted that the country is at the forefront of the global knowledge movement with an education system that is both flexible and aligned with its civilizational ethos.
IIT Hyderabad, in collaboration with the Global Young Academy, the Indian National Young Academy of Sciences and the Indian National Science Academy, is hosting the international conference. This week-long event, being held for the first time in the country, is witnessing participation of 60 countries and marks a significant milestone in bringing together the next generation of global scientific leaders to collaborate on science-driven solutions for global challenges. Speaking on the occasion, Union Education Minister Dharmendra Pradhan described science as regenerative and integral to the vision of Vikasit Bharat, where economic strength is complemented by scientific excellence, emphasizing the country's ancient tradition of knowledge creation rooted in curiosity, sustainability and ethics. The minister recalled the country's remarkable progress through milestones in space missions, food security, automation, robotics and big data. He stressed the importance of inclusivity in the digital domain, noting India's development of large language modules, digital public infrastructure and direct benefit systems, beside initiatives that exemplify how science is transforming lives. He underscored global solidarity, that is called Vishwa Bandhutva, through international collaboration in science. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
बिहार में नशे के बढ़ते प्रभाव और साइबर अपराधों में बढ़ोतरी के मद्देनजर बिहार पुलिस ने दो नई इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया है। इससे साइबर अपराध और नशे की तस्करी के संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार पुलिस ने नई पहल करते हुए दो महत्वपूर्ण इकाइयों के गठन का निर्णय किया है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक से लैस साइबर सुरक्षा यूनिट और मादक पदार्थ नियंत्रण तथा मद्य निषेध यूनिट शामिल है। बिहार पुलिस ने माना है कि साइबर अपराध और नशे के कारोबार के तरीके बदल रहे हैं, इसलिए समाज को प्रभावित करने वाले इन दोनों अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने बताया कि नई इकाइयों से पेशेवर से साइबर अपराध और मादक पदार्थ तस्करी तथा शराब तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।
दो नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है, दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो NDPS एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए CID के अंतर्गत ही एक इकाई थी।
अपर पुलिस महानिदेशक श्री कृष्ण ने बताया कि मादक पदार्थ निरोधक यूनिट बन जाने से बिहार में इस बढ़ते सामाजिक चिंता के विषय को लेकर समाधान में काफी मदद मिलेगी।
हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ, इसमें दवाइयाँ भी होती है, कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं।
बिहार पुलिस की इन दोनों पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे भविष्य की बढ़ती आपराधिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
और अब पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की सफलतम यात्रा पर ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की सफलतम यात्रा के उपलक्ष्य में करनाल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। करनाल से सांसद व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यशाला में भाग लिया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। केंद्रीय ऊर्जा आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के लंबे शासनकाल की तुलना में भाजपा सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 11 सालों में तेज गति से विकास किया है और 2047 तक 33 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिससे व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यशाला में मौजूद लोगों से आह्वान किया कि वे इन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं और जनता को जागरूक करें कि मोदी सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन सिर्फ आंकड़ों में नहीं जमीनी स्तर पर भी लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि संकल्प से सिद्धि तक के सफर की ये केवल शुरुआत है, लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. And today we focus on Atmanirbharta in defence, making India a global power.
Over the past decade, India has redefined its security doctrine with clarity, conviction and confidence. From the surgical strikes of 2016 to Operation Sindoor in 2025, the message is clear. India will not tolerate threats to its national security. Operation Sindoor marked a watershed moment in India's counter-terror response. A precise, coordinated mission neutralized 9 terror camps across the border. A swift and decisive reply to the Pahalgam terror attack. Indigenous manufacturing played a vital role in the success of Operation Sindoor, transforming national security from strategy into execution. From the aircraft carrier INS Vikrant to the high-altitude light combat helicopter LCH Prachanda, India is designing and deploying with confidence. Initiatives like Innovations for Defence Excellence, IDEX, are empowering startups and MSMEs to deliver cutting-edge solutions for our forces. Furthermore, defence exports have surged to a record 23,622 crore rupees, a 34-fold increase since 2014. Over 5,000 items are now on the positive indigenization list, and 75% of the defence capital acquisition budget is earmarked for domestic production in fiscal year 2025-26. From front lines to factory floors, from battlefields to boardrooms, India is forging a new era where security is strength and self-reliance is our shield. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amrit Kaal. Seva, Sushasan, Gareeb Kalyan ke 11 saal.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
राइट, सो इन फुटबॉल द इंडियन सीनियर मेंस टीम विल फेस हांगकांग इन अ ग्रुप सी मैच ऑफ द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स दिस इवनिंग इन कोलून, हांगकांग। द मैच इज शेड्यूल्ड टू किक ऑफ एट 5:30 पीएम आईएसटी। बोथ टीम्स आर सीकिंग देयर फर्स्ट विन इन द ग्रुप स्टेज। इंडिया प्लेड आउट अ गोललेस ड्रॉ अगेंस्ट बांग्लादेश इन द प्रीवियस मैच, व्हाइल हांगकांग ऑल्सो ड्रू विद सिंगापुर। The match holds significant importance as only the top team from the group will qualify for the prestigious AFC Asian Cup set to be held in Saudi Arabia in 2027. Of course, this marks India's first visit to Hong Kong in 16 years. The last time the two sides met was in a friendly back in 2009. And now coming to the business news. The benchmark domestic equity indices ended on a flat note in a range-bound trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dipped 53 points to close at 82,392, while the National Stock Exchange Nifty 50 added just a point to settle at 25,104.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember social reformer Ramanath Tagore, who died on the 10th of June, 1873. In his younger age, he was attracted towards the ideas of Raja Ram Mohan Roy and was one of the original trustees of the Brahma Samaj.
A leading social figure in 19th century Kolkata, Ramanath Tagore was born on the 26th of October, 1801. He was the younger brother of Dwarkanath Tagore. He helped form the Brahma Samaj. He also initiated the establishment of the British Indian Association and was its president from 1867 to 1877. The Indian Association played a catalytic role in building up political consciousness.
In association with Prasanna Kumar Tagore, Ramanath Tagore started the paper Indian Reformer. He contributed extensively to the Harkara, an Englishman, under the pseudonym Hindu. As a member of the Bengal Legislative Council, Ramanath Tagore advocated the rights of the tenants and was named the Rayat's Friend. He was nominated to the Viceroy's Council in 1873 and was made a Maharaja by Viceroy Lytton. Ramanath Tagore continued to work for the people till his death. We salute the great Indian.
We also remember Gandhian freedom fighter Ponaga Kanakamma, who was born on the 10th of June 1892 in Nellore district, Andhra Pradesh. She participated in the non-cooperation movement and salt satyagraha and is credited for founding Sri Kasturi Devi Vidyalayam, a large school for girls in her home district.
Though Ponaka Kanakamma had no formal schooling, she acquired proficiency in Telugu, Hindi and Sanskrit by her own efforts. In 1913, she started Sujana Ranjini Samajam in Potlapuri village near Nellore to serve the society. She worked for the upliftment of depressed classes. For a brief period, she was under the spell of revolutionary politics and hosted Bipin Chandra Pal during his visit to Nellore in 1907.
Kanakamma later became an ardent disciple of Mahatma Gandhi. She donated 13 acres of land to establish the Pinakini Satyagraha Ashram near Nellore, which was inaugurated by Gandhiji on the 7th of April 1921. For participating in the non-cooperation movement and salt satyagraha, Kanakamma underwent 1.5 years of rigorous imprisonment. Ponaka Kanakamma hosted many eminent freedom fighters and poets at her residence in Potlapuri.
In 1923, Kanakamma founded Sri Kasturi Devi Vidyalayam as a part of Gandhiji's constructive program, and Gandhiji laid the foundation stone for the permanent building in 1929. This sprawling Kasturi Devi Vidyalayam campus, extended to about 23 acres, is a living monument for Kanakamma.
Kanakamma continued to work for the betterment of people till her death in 1963. Salutes the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter Makka Passi, who took part in the First War of Independence in 1857. Makka was a high military official in the Nawab of Awadh's army. He organized 200 soldiers and led them to fight against a British battalion passing through Barabanki from Awadh.
Makka Passi, along with his comrades, halted the British battalion on its way near village Chinhat on the 10th of June 1857 and fought bravely. After a fierce fight, Makka Passi was shot dead by the British. Salutes the great martyr.
And moving on in this series of praying tributes, we have Bhai Veer Singh, who is having his death anniversary today. Bhai Veer Singh is remembered as the father of modern Punjabi literature and a key figure in the development of Punjabi language and Sikh literature. Tributes to Bhai Veer Singh often highlight his contributions to Punjabi literature, his role in the Sikh community, and his lasting impact on the Punjabi language and culture. His legacy is celebrated through various events and initiatives, including the celebration of his birth anniversary and the establishment of literary centers in his name. Bhai Veer Singh was the first recipient of the Punjabi Sahitya Academy Award, and his writings gave a new direction to Punjabi literature and served as an inspiration for the generations, and his contributions will be remembered for centuries to come. And next, we pay tribute to Girish Karnad, who has his death anniversary today. Remembering him, he was a polymath who donned so many hats all his life that it is difficult to peg him to a single role. The Indian playwright, author, actor and film director, whose movies and plays written largely in Kannada, explored the present by way of the past. Alongside his contemporary dramatists, Karnad transformed the modern Indian theatre by making it socially relevant and stylistically innovative. Karnad was awarded the Padma Shri, which is India's top civilian honours, in 1974 for his contributions to theatre. And in 1992, the Indian government awarded Karnad another of its highest honours, the Padma Bhushan. He is also the recipient of the Gyanpith Award, which is India's highest literary prize, in 1999 for his contributions to literature and theatre. But who can forget Girish Karnad's role in Hindi movies like Nishant, Manthan, Swami? And of course, we also remember Girish Karnad as the presenter of a weekly science magazine program called Turning Point that aired on Doordarshan in 1991. But we have an excerpt from the role he played in Malgudi Days as Swami's father, on which used to be aired on Doordarshan in those days.
Swami, uthani abhi tak?
To nahi de bichare ko. Wo to abhi bachcha hai. Aur phir somvar ko to tu bhi der se uthta hai, sino.
माँ आज मंगलवार है, देर से उठेगा तो होमवर्क कौन करेगा? लाड प्यार की भी एक हद होती है, अब वो कोई बच्चा नहीं रहा, 9 साल का है, 9 साल।
सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए।
इस हालत में
आज पुण्यतिथि है सिगमर पोलके की। सिगमर पोलके एक जर्मन कलाकार थे जिनका जन्म 1941 में हुआ और उनकी मृत्यु 2017 में हुई। वे अमूर्त अभिव्यक्तिवाद के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। सिगमर पोलके ने अमूर्त चित्रकला और अन्य कलात्मक माध्यमों में लिथोग्राफी, प्रिंटिंग और फोटोग्राफी में काफी नए प्रयोग किए। उनकी कला अक्सर अप्रत्याशित थी और चुनौती देने वाली होती थी, जो पश्चिमी यूरोप की कला परिदृश्य के नियमों से परे थी। उन्होंने विज्ञापन और उपभोक्ता संस्कृति की कल्पना को भी अपने कला में शामिल किया। सिगमर पोलके का मानना था कि ज्ञान स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त है, यह हमें सुसंगत वास्तविकता की खोज में केवल इतनी दूर तक ले जा सकता है और यह कि सत्य जितना हम समझते हैं उससे कई अधिक स्तरित है।
Right, and we also pay tribute to Omkar Nath Dhar. You must be surprised who Omkar Nath Dhar is, but all of you will remember the legendary actor Jeevan. He is Omkar Nath Dhar. It is his birth anniversary today. We honor his remarkable contributions to Indian cinema, particularly in portraying iconic negative roles. And Jeevan's career spanned over 5 decades. And who can forget him playing Narad Muni in so many movies? But here, right now, we have his dialogue from the movie Yarana.
Ro raha hai? Kyun ro raha hai? Arey, main puchta hoon, ro kyun raha hai? 1.5 mahina pehle Trilok Singh ne mujhe jail bhijwaya tha. तू हंस रहा था, आज तेरा बाप जेल से बाहर निकला है, तू रो रहा क्यों? रो रहा है? मेरी बहन विधवा हो गई, मुझे जेल भेजने वाला त्रिलोक सिंह परलोक सिंह।
And next in line for in the birth anniversary is M.S. Gopalakrishnan. Gopalakrishnan was a renowned Indian classical music violinist, recognized for his mastery for both Carnatic and Hindustani music. He's remembered for his unique style, prodigious talent, and significant contributions to Indian classical music. He received the Padma Bhushan Award in 2012 and the Madras Music Academy's Sangeet Kalanidhi in 1997. Of course, M.S. Gopalakrishnan was also recipient of the Padma Bhushan, Padma Shri and Sangeet Kalanidhi Sangeet Natak Academy Awards.
आज जन्मदिन है प्रकाश पादुकोण की। प्रकाश पादुकोण पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1980 में उन्हें विश्व के नंबर 1 का स्थान दिया गया था। उसी वर्ष वे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के सह संस्थापकों में से एक हैं, जो भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संस्था है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।